आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दी। चिकित्सा पेशेवरों को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए धौला कुआं फ्लाईओवर और आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के मोबाइलों के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के अशोक विहार क्षेत्र में वैष्णवी पार्क और पौधा नर्सरी का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन ने कहा कि सुश्री कविता करीब 5 महीने से हिरासत में हैं और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जांच का काम पूरा हो गया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत नामंजूर करने के पहले जुलाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को सुश्री कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था और तब से वे तिहाड़ जेल में थीं। बाद में 11 अप्रैल को जेल से उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच सुश्री कविता ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। देश में चिकित्सा पेशेवरों को कामकाज की जगहों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल एनटीएफ की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली इस बैठक में गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के बारे में देशभर से व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एनटीएफ के लिए सुझाव शीर्षक से एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उनके यहां चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने का भी अनुरोध किया है। पोर्टल पर प्राप्त सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों के पास विचार करने के लिए भेजेगा। एनटीएफ सदस्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेंगे। राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक भी होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस रोग के प्रबंधन की औषधि की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है। ये सेंसर स्मार्टफोन आधारित तथा किफायती है और इसका उपयोग भी सरल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान ने बताया है कि इस सेंसर की मदद से शरीर में एल डोपा की सही मात्रा का पता लगाया जा सकेगा। दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने जलभराव की समस्या को दूर करने के मद्देनजर आज रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाईओवर और उसके आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी भी उनके साथ रहे। निरीक्षण के बाद मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके अलावा सड़क के आसपास मौजूद पानी निकासी प्रणाली को प्रति घंटा 100 मिलीमीटर बारिश के मुताबिक सुदृढ़ किया जाए। मंत्री आतिशी ने जलभराव वाले स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मोबाइल पंप तैनात करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजधानी में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद विभिन्न इलाकों समेत रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलभराव हो गया था, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने आज अधिकारियों और पार्षदों के साथ विकासपुरी और तिलक नगर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई ढलाव घरों के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और मुख्य सड़कों तक फैल गया है। डॉ ओबरॉय ने कूड़ा प्रबंधन की निजी कंपनियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी ढलाव घरों की मरम्मत कराई जाए और नियमित रूप से कूड़ा उठाया जाए। राजधानी के आशा किरण आश्रय गृह में पिछले दिनों हुई 14 लोगों की मौत पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आश्रय गृह में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण यह हादसा हुआ। आज एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस आश्रय गृह में डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अधीन आने वाले सेवा विभाग ने अपना कार्य नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में उपराज्यपाल कार्यालय लगातार गलत बयान जारी कर रहा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज का यह भी कहना है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। नवनिर्मित अस्पतालों में भी डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के मोबाइल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति करने वाले एक शख्स को उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर के आसपास गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नामी कंपनियों के 35 से अधिक मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और आपूर्ति में इस्तेमाल किए जाने वाला एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। अपराध शाखा ने करीब 900 किलोमीटर पीछा करके आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के पकड़ने से दिल्ली में चोरी के 20 मामलों का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने बताया है कि आरोपी चोरी के महंगे मोबाइलों की नेपाल समेत भारत के पड़ोसी राज्यों में तस्करी करता था, उन्हें कम दाम पर बेचा जाता था। श्री कुमार ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ हत्या, लूटपाट और चोरी के 9 मामले पहले से ही दर्ज हैं। भारतीय रंगमंच में अपने 60 वर्षों के योगदान का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा राजधानी में रंगषष्ठी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में देश के प्रसिद्ध लेखकों और नाटककारों द्वारा लिखे गए नाटकों का उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा मंचन किया जा रहा है। इसके अलावा NSD के पुराने छात्र और जाने माने फिल्मी कलाकार द्वारा अलग अलग विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव 9 सितंबर तक चलेगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
रंगषष्ठी उत्सव NSD के एक महत्वपूर्ण विभाग रिपर्टरी कंपनी की विरासत का उत्सव है, जिसकी स्थापना 1964 में नाट्य विद्यालय के छात्रों को शिक्षा और एक पेशेवर मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। हालांकि वर्तमान में यह NSD के प्रमुख संस्थानों में शामिल है, जो नाटकों पर काम करने के साथ साथ नाटकों में प्रयोग करने का एक केंद्र बन गया है। रंगषष्ठी महोत्सव में देश के महान पट कथाकारों के नाटकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, धर्मवीर भारती का अंधा युग, इस्माइल चुनारा की कृति लैला मजनू, विजयदान देथा की रचना मायरी मैका से कहूं और अजय शुक्ला की कृति ताजमहल का टेंडर शामिल है। पिछले 6 दशकों में रिपर्टरी में विभिन्न नाट्य कलाओं को प्रदर्शित किया है और अनगिनत अभिनेताओं, निर्देशकों और नाटककारों को अवसर दिया है। NSD का कहना है कि यह उत्सव नाटक के प्रति उत्सुक छात्रों और पेशेवरों को एक साथ लाकर अगली पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
23 अगस्त को शुरू हुए इस उत्सव में टिकट के साथ प्रवेश किया जा सकता है। टिकट की पूरी जानकारी NSD की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली के डॉक्टर साहब सिंह वर्मा स्टेडियम में आयोजित दिल्ली नगर निगम का 15 दिवसीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 12 जोन के लगभग 1000 शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को योग, शारीरिक प्रशिक्षण, एरोबिक्स अभ्यास और विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2015 में अनुभव नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। पोर्टल पर इस वर्ष 22 मंत्रालयों और विभागों के लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से उत्कृष्ट लेखों को 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
ये पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है। पोर्टल के शुरू होने के बाद से अब तक 54 अनुभव पुरस्कार और 9 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके साथ ही पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 11वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत और 55वीं पूर्व सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यशाला की अध्यक्षता भी करेंगे। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य उन अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रक्रिया को सुगम बनाना है जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के अशोक विहार क्षेत्र में आज वैष्णवी पार्क और पौधा नर्सरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्री सक्सेना ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने के तुरंत बाद इस जगह का दौरा किया था। तब यह एक बंजर भूमि थी जो अब वैष्णवी पार्क के रूप में विकसित हो गई है। उन्होंने कहा कि एक अतिक्रमित और बंजर भूमि से हरित स्थल में परिवर्तित यह पार्क स्थानीय लोगों को एक ऐतिहासिक मनोरंजक केंद्र की अनुभूति देगा। उपराज्यपाल ने कहा कि शहर के बंजर स्थानों को हरित स्थल में परिवर्तित करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के असीता बांसनसेरा मेहरौली पुरातत्व पार्क संजय झील और वैष्णवी पार्क को वास्तविक रूप से हरित स्थलों में तब्दील किया गया है।
आज ये इतना सुंदर पार्क डीडी ने बना दिया है और मुझे यकीन है कि आसपास के जो लोग हैं इसका उपयोग करेंगे, इसे एंजॉय करेंगे और इसे मेंटेन भी करेंगे। डीडीए तो करेगा ही, लेकिन लोकल लोग भी अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये पार्क हमेशा मेंटेन रहेगा। इस तरीके का काम डीडीए पूरे सिटी के अंदर जगह जगह पर कर रहा है। बहुत सारे पार्क नए बने हैं और भी बन रहे हैं।
जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी एएसपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। जेजेपी नेता दुष्यंत सिंह चौटाला और एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज नई दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। गठबंधन हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें जेजेपी 70 सीटों पर और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही होगी। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष हॉकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने चंद्रयान 3, मंगल मिशन और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर आधारित मॉडल पेश किए। इसके अलावा छात्राओं ने मंगल ग्रह पर जीवन को दर्शाती एक पेंटिंग और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के सम्मान में एक कविता भी प्रस्तुत की। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के एक वर्ष पूरे होने पर 23 अगस्त को देशभर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। इसी कड़ी में शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य संस्थाएं अपने परिसरों में इस दिवस को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राजधानी के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दी। चिकित्सा पेशेवरों को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए धौलाकुआं फ्लाईओवर और आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के मोबाइलों के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के अशोक विहार क्षेत्र में वैष्णवी पार्क और पौधा नर्सरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।